Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kenopanishad, presented by Swami Sri Vishwatmananda Puriji. Thank you. Om Namah Shivaya.
Jana ho jaye, aur kuch din ke baad dhire dhire satsang chhut jata hai, shravan chhut jata hai. का मतलब ये हुआ कि प्रयत्न करने वालों में कोई कोई ही सफल हो जाता है. इसलिए यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्त्वतः. इससे भगवान कहते हैं कि कोई कोई ब्रह्मज्ञानी बन जाता है. और ब्रह्मज्ञान यदि प्राप्त हुआ तो फिर उसका कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता. ब्रह्मज्ञानी यानी इस संसार में सबसे उत्कृष्ट है परमात्मा का निर्गुण निराकार स्वरूप, जहां पर दुख का लेश भी नहीं है, निरतिशय आनंद है. ब्रह्म विद्या उस स्वरूप में विद्वान को स्थित करती है, सारे दुखों से रहित कर देती है. ऐसी जो ब्रह्म विद्या है, वह ब्रह्म विद्या जिसके जीवन में आ जा तो फिर उससे उत्कृष्ट दूसरा कोई हो नहीं सकता, सबसे श्रेष्ठ वही है. तो इंद्र को, अग्नि को, वायु को ब्रह्म विद्या प्राप्त हुई है. इसलिए ये कहते हैं, श्रुति बता रही है कि बाकी देवताओं की अपेक्षा इनमें श्रेष्ठता है. इन तीनों में चौथे खंड के दूसरे मंत्र में यही चर्चा श्रुति कर रही है कि तस्माद् वा येते देवा अतितराम इव अन्यान देवान. मनुष्य की अपेक्षा श्रेष्ठत्वेन रूपेण प्रतीत होने वाली जो देवयोनी है, और उस देवयोनी में अनेक देवता हैं, लेकिन उन सब देवताओं को भी पीछे छोड़ करके, उनका अतिक्रमण करके, यदि श्रेष्ठतया कोई प्रतीत हो रहे हैं तो वे कौन है? तो कहते ये तीनों देवता हैं. तस्माद् वा येते देवा. और येते देव कौन है? तो कहते अग्नि, वायु, इंद्र. ये तीनों श्रेष्ठ क्यों हैं? तो कहते श्रेष्ठता का हेतु बताया जा रहा है कि येनत नेदिष्टम पस्पृशुः. येनत यानी ये जो ब्रह्म है, इस ब्रह्म का अत्यंत समीपता से उन्होंने दर्शन किया, स्पर्श किया, संवाद किया. और नेदिष्ट कहा जाता है अत्यंत समीप को. और अत्यंत समीप कहा जाता है किसको? अत्यंत समीप होता है स्वयं का अपना स्वरूप ही. इसलिए भाष्य में भाष्यकार भगवान निदिष्टम शब्द का अर्थ करते हैं कि अत्यंत प्रिय, परम प्रेमास्पद तया ब्रह्म को जाना. और परम प्रेमास्पद कौन होता है? जिसके प्रति आपका निरतिशय प्रेम है, निरपेक्ष प्रेम है, किसी अपेक्षा के बिना जिसके प्रति आपका प्रेम है. ऐसी वस्तु यदि आप संसार में खोजेंगे तो वह आपसे भिन्न तया प्रतीत नहीं होगी. आपसे भिन्न ईश्वर भी हो तो वह आपको अत्यंत प्रिय नहीं हो सकता, निरतिशय प्रिय नहीं हो सकता. क्योंकि शास्त्र का सिद्धांत है आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति. अपने से भिन्न, अपने से कितना भी दूसरा श्रेष्ठ हो लेकिन उसके प्रति यदि किसी का प्रेम होगा तो वह सापेक्ष ही प्रेम होगा, निरपेक्ष प्रेम नहीं होगा. सापेक्ष प्रेमास्पद जो होगा, जिसके प्रति सापेक्ष प्रेम है, उसे निदिष्ट नहीं कहा जाता, अत्यंत समीपवर्ती नहीं कहा जाता, परम प्रेमास्पद नहीं कहा जाता, प्रेमास्पद है. जब तक आपकी उसके प्रति अपेक्षा है कुछ उससे, वह अपेक्षा पूर्ण करेगा तभी तक वह आपको प्रिय लगेगा। और यदि आपकी अपेक्षा की पूर्ति में देखते हैं कि सहयोगी नहीं है, अनुकूल नहीं है, जिस क्षण प्रतिकूल होगा तो वह अभी तक अपने से भिन्न प्रिय के रूप में प्रतीत हो रही थी वस्तु वह अप्रिय हो जाती है, उसमें से प्रेमास्पदत्व निकल जाता है। इसलिए निर्दिष्टम पस्पृशु का अर्थ है कि आत्म रूप से जाना, अत्यंत समीपतया जान लिया। और बाकियों की अपेक्षा पहले जाना, प्रधान होकर के इन देवताओं ने जाना, ये दो हेतु बताए कि ये न प्रथमो विदान चकार और निर्दिष्टम पस्पृशु, कि बाकी देवताओं की अपेक्षा अग्नि वायु और इंद्र ने ब्रह्म को पहले जाना और आत्म रूप से जाना, निर्दिष्टतया जाना, सामीप्य प्राप्त करके जाना। इसलिए श्रुति कहती है कि बाकी देवताओं की अपेक्षा ये तीनों देवता उत्कृष्ट हैं। और इन तीनों देवताओं में जिसने ब्रह्म के रूप में जाना वो है तीनों देवताओं में सबसे पहले ब्रह्म के रूप से जानने वाले इंद्र। इसलिए इंद्र को श्रुति कहती है कि अग्नि और वायु इन दोनों की अपेक्षा भी श्रेष्ठ है इनको ज्ञान कराने वाले इंद्र। इंद्र को तो विद्या के वाक्य से ब्रह्म का ज्ञान हुआ और इंद्र के वाक्य से अग्नि और वायु को ज्ञान हुआ। ज्ञान कराने वाला, ब्रह्म का ज्ञान कराने वाला श्रेष्ठ होता है। तो इसलिए श्रुति ने कहा कि तस्माद् वा इंद्रो अतितरान इव अन्यान देवान। तो इंद्र ने इन तीनों देवताओं में से सबसे पहले ब्रह्म को विद्या के वाक्य से जाना और फिर अग्नि और वायु को ब्रह्म का ज्ञान कराया। इसलिए अग्नि और वायु इन दोनों की अपेक्षा इंद्र में और भी उत्कृष्टता है, श्रेष्ठत्व है। यह चर्चा इस प्रकार ये चतुर्थ मंत्र के क्या नाम चतुर्थ खंड के तृतीय मंत्र तक हुई। अब यहां पर एक वर्तमान साधकों के लिए उपासना श्रुति बता रही है। इंद्र को और अग्नि को तो ज्ञान हुआ ब्रह्म का, वह कृतार्थ हो गया। हमारे लिए इंद्र के ज्ञान और अग्नि और वायु को ब्रह्म का ज्ञान हुआ, उससे क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? तो इस आख्यायिका के माध्यम से श्रुति हम साधकों के लिए हितकर एक साधना बता रही है, उपासना, अधिदैव उपासना और अध्यात्म उपासना। ऐसी दो प्रकार के दो उपाधि को लेकर के एक ही ब्रह्म की उपासना का वर्णन करने वाले इधर दो मंत्र हैं। तो पहले कहते हैं कि तस्य एष आदेश। आदेश कहा जाता है उपदेश को, और तस्य यानी ये जो प्रकृत ब्रह्म है, इस प्रकृत ब्रह्म के उपासना का ये उपदेश है, एष आदेश, जो निर्विशेष ब्रह्म का आत्म रूप से अनुभव करने में समर्थ नहीं है उन्हें ब्रह्म के सगुण स्वरूप का चिंतन करना है। सगुण स्वरूप के चिंतन का ही दूसरा नाम है उपासना। तो तस्य यानी इस ब्रह्म के उपासना का यह उपदेश है। इस प्रकार क्या कि यद एतत विद्युतो व्यद्युतत, ये जो विद्युत है मैंने आकाश में बिजली चमकती है, जो आकाशीय विद्युत उसका जो तेज है वह तेज एक बार प्रकट होता है और सर्वत्र फैल जाता है, और जब अत्यधिक मात्रा में बिजली चमकती है तो आपके आंख को भी एक प्रकार से कर देती ना, जैसे सूर्य के सामने बिल्कुल स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते, ऐसे उस बिजली के प्रकाशित होते ही बिजली का तेज भी आप देख नहीं सकते, आपके आंख के तेज को अभिभूत कर देता है। का मतलब बाह्य दूसरे तेज को, बिजली का तेज एक अभिभूत कर देता है और सर्वत्र फैल जाता है, अंधकार को मिटा करके। घने बादल आए हैं तो अंधकार हो जाता है उससे, और उसमें फिर बिजली चमकती है तो अंधकार को मिटा देता है और सर्वत्र एक क्षण के लिए प्रकाश ही प्रकाश होता है। और ये तो है बाह्य उदाहरण, इसको उपमान कहा जाता है। और इस उपमान के माध्यम से यह समझा जा रहा है कि देवताओं के भी बुद्धि में जो एक अज्ञान छाया था, अज्ञान रूपी अंधकार, और उनके उस अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा करके, विदारित करके, बिजली के तेज के तरह ही यक्ष का रूप धारण करके वो अत्यंत तेजस्वी ब्रह्म देवताओं के सामने प्रकट हुआ। और जैसे बिजली का तेज प्रकट होता है, बिजली के तेज कब प्रकट होगा कोई कहा नहीं जाता, अकस्मात ही बिजली का तेज प्रकट होता है और उस समय के अंधकार को मिटा करके एक क्षण के लिए सर्वत्र व्याप्त होता है। ऐसे अग्नियादि देवताओं के सामने अत्यंत तेजस्वी यक्ष के रूप में बिजली के तेज के तरह ही ब्रह्म अभिव्यक्त हुआ, प्रकट हुआ और देवताओं के बुद्धि में छा गया, इसलिए देवताओं का सारा विचार छूट गया और उसी ब्रह्म की ही खोज में लग गए। तो ये एक दृष्टांत है, जैसे बिजली का तेज अज्ञान अंधकार को विदारित करके प्रकट होता है, अंधकार को चीर करके सर्वत्र व्याप्त होता है, अत्यंत तेजस्वी होता है, उस वैसा ही ब्रह्म अत्यंत तेजस्वी है और देवताओं के सामने प्रकट हुआ था, इसलिए ये देवता को निमित्त बना करके प्रकट हुआ ब्रह्म अत्यंत तेजस्वी है। इस रूप से तेजस्वित्व गुण से विशिष्टतया उस ब्रह्म का चिंतन करने के लिए यहां पर विद्युतो व्यद्युतत आ ये वाक्य है, ये बता रहा है। और एक गुण बताया जा रहा है कि नियमी मिशत, ये जो निमिष और निमेष और उन्मेष होता है ना, उन्मेष कहता है कहा जाता है ये जो पलके खुल जाती है तो उन्मेष हुआ, और पलके गिर जाती है बंद हो जाती है समय के लिए तो निमेष। तो ये निमेष और उन्मेष बहुत जल्दी जल्दी होता है, आप सामने देख रहे हैं किसी वस्तु को तो बीच में कई बार निमेष हो जाता है फिर उन्मेष होता है, लेकिन आपको मालूम में नहीं पड़ता, बहुत शीघ्र होता है। ऐसे निमेष और उन्मेष करने वाला जो चक्षु है उसमें उन्मेष निमेष कारित्व अत्यंत शीघ्र है, शीघ्र उमेषकारी है चक्षु, शीघ्र निमेषकारी है चक्षु, चक्षु का उन्मेष निमेष अत्यंत शीघ्र होता है। ऐसे ही ये जो ब्रह्म है जब जगत को प्रकट करना होता है, संसार को बनाना होता है, तो बहुत समय नहीं लगता ब्रह्म को। बस ब्रह्म का संकल्प हुआ, बहुत श्याम प्रजाय, तो सारे संसार को बना देता है। और स्थिति भी संसार की ईश्वर करते हैं, तो उसके लिए बहुत प्रयास करना नहीं पड़ता। तो उन्मेष निमेष जैसे करने के लिए चक्षु को कोई न प्रयास करना पड़ता है, न कोई ज्यादा समय लगता है। ऐसे ब्रह्म उन्मेष निमेष के तरह जगत की उत्पत्ति स्थिति लयादि रूप जो अपना कार्य है, व्यापार है, इस व्यापार को बिना प्रयास के ही संकल्प मात्र से और शीघ्र करते हैं। और ऐसे हरेक कार्य ब्रह्म का व्यापार अनायास होता है, निश्वास के तरह होता है। इंद्रादि देवता जब दूर थे तो इंद्र के सामने देवताओं के सामने प्रकट हुआ तो जैसे आकाश में बिजली चमकती है, एक क्षण भी नहीं लगता उस प्रकाश को प्रकट होने में। ऐसे देवताओं के सामने यक्ष रूप में प्रकट हुआ तो एक क्षण में ही प्रकट हुआ। और जब इंद्र पाश में आए तो जैसे निमेष कब होता है आंख का ये आपको पता भी नहीं चलता, शीघ्र ही होता है। तो इंद्र के पास में आते ही यक्ष रूप से तिरोहित हो गए निमेष के तरह ही, वो भी बहुत शीघ्र ही हुआ, निमेष होना यानी अंतर्धान होना भी। तो ये यक्ष रूप से प्रकट होना और इंद्र के आने के बाद यक्ष रूप को छिपाना नियमी मिशत के द्वारा बताया गया, नियमी मिशत के तरह है वो। ये दोनों कार्य देवता को निमित्त मान करके हुए हैं, देवता को ही आधार बना करके, निमित्त बना करके, उद्देश्य बना करके। सगुण ब्रह्म का यक्ष रूप से प्रकट होना अत्यंत तेजस्वी रूप से और इंद्र के समीप में आने के बाद निमेष के तरह अंतर्हित हो जाना, अंतर्धान हो जाना, ये दोनों व्यापार सगुण ब्रह्म के देवता के उद्देश्य होने के कारण इन दोनों व्यापारों को निर्वर्तित करने वाला ब्रह्म अधिदैव ब्रह्म कहलाता है। इसलिए कहते हैं कि इति अधिदैवतम का अर्थ है देवता शब्द का अर्थ, इंद्रादि देवता भी है तो देवता शब्द का अर्थ ये जो ब्रह्म है। छांदोग्य उपनिषद के छठवें अध्याय में देवता शब्द से, परादेवता शब्द से ब्रह्म को भी कहा है, सहसा परादेवता। तो सगुण ब्रह्म देवता है और अधिदेवतम का अर्थ है उस सगुण देवता शब्दित ब्रह्म विषयक उपासना का उपदेश यहां पर बताया गया। वो उपदेश ये है कि उपासक को ब्रह्म के अत्यंत तेजस्वी तथा निमेष शब्दित शीघ्र कार्यकारित्व, इन दो गुणों से विशिष्टतया ब्रह्म का ध्यान करना है। ये ब्रह्म की उपासना, अधिदैव ब्रह्म की उपासना यहाँ पर बताई गई है कि येष आदेशो यद एतद विद्युतो व्यद्युतत आ और नियमिमिषत आ, इन दोनों विशेषणों से, दो गुण से विशिष्टतया ब्रह्म की उपासना उपासक करें, ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक तो है ब्रह्म विद्युत के तेज के तरह अत्यंत तेजस्वी है और दूसरा निमेष जैसा अनायास और शीघ्र होता है, ऐसा ही जगत के उत्पत्त्यादि व्यापारों को अनायास ही तथा शीघ्र ही संपन्न करने वाला ये प्रकृति ब्रह्म है। इस प्रकार इन दो गुणों से विशिष्टतया ब्रह्म की उपासना उपासक करें। और ये जो उपासना करनी है वह अहंग्रह उपासना है, ब्रह्म की आत्मा के रूप में उपासना करनी है, मैं के रूप में। इसे बताने के लिए अध्यात्म एक चिंतन बताया जा रहा है कि अथ अध्यात्मम यद एतद गच्छति इवच मनो अनेन च एतद उपस्मरति अभिक्षणम संकल्प। इस वाक्य से ये बताया जा रहा है कि ब्रह्म जो अत्यंत तेजस्वी है और निमेश के तरह अनायासी शीघ्र जगत उत्पत्ति आदि कार्यों का निर्वर्तक है, वह कहां पर है? वो ब्रह्म आपके हृदय में है। और अध्यात्म में इस प्रकार का चिंतन करना है कि ये जो आपका मन है, चिंतन तो मन से ही होना है, और उस अत्यंत तेजस्वी तथा शीघ्र कार्यकारी ब्रह्म का चिंतन ये हमारा मन कर रहा है, मन उसका ग्रहण कर रहा है मैं के रूप में। मन से लेना है मन की यानी अंतकरण की अहम इत्याकारी का वृत्ति, और आपकी अहम इत्याकारी का जो वृत्ति है, अहम इस रूप वाली वृत्ति है, वह इसी तेजस्वी और शीघ्र कार्यकारी ब्रह्म को अपना आलंबन बना रही है। ऐसा आप मन से उपासक को चिंतन करना है। इसलिए कहते हैं कि ये तत् यानी ब्रह्म गच्छति इव मनः। वस्तुतः ब्रह्म को मन विषय नहीं बना सकता, क्योंकि पहले कहा गया कि यन मनसा न मनुते येन अहुर मनोमतम। मन का विषय ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप नहीं बनता, क्योंकि मन को भी मनन रूप व्यापार का सामर्थ्य उस ब्रह्म से मिल रहा है। जैसे चंद्रमा को प्रकाश सूर्य से मिलता है, इसलिए चंद्रमा अपने प्रकाश से सूर्य को प्रकाशित नहीं कर पाता, अपितु चंद्रमा से प्रकाश पाकर, क्या ना, सूर्य से प्रकाश पाकर के चंद्रमा अपनी जो प्रकाश से वस्तु है दूसरी घटादि उनको प्रकाशित करता है, दूसरे को प्रकाश देता है। ऐसे मन वस्तुतः जिसको विषय नहीं बना पाता, लेकिन उसका भी चिंतन हमको करना होता है मन से ही। तो चिंतन करना है तो चिंतन के लिए फिर वो गुण बताए हैं कि वो अत्यंत तेजस्वी हैं, ऐसी वृत्ति बना लें, और अत्यंत शीघ्र कार्यकारी हैं, ऐसा मन से उपासक चिंतन करें। और वो जो अत्यंत शीघ्रकारी और अत्यंत तेजस्वी ब्रह्म वो कौन है? तो ब्रह्म मैं हूं। और मन में जो बार बार संकल्प होता है, अभिक्षण शब्द का अर्थ होता है बार बार, पुनः पुनः संकल्प होता है, उस संकल्प का निर्वर्तन सामर्थ्य मन में, इसी जिस ब्रह्म से मिल रहा है मन से ही इस प्रकार का एक विचार करना है कि वो ब्रह्म मैं हूं। अर्थात यहां पर यह बताया गया कि अत्यंत तेजस्वी और जगत की उत्पत्ति आदि अनेक प्रकार के व्यापारों को बिना प्रयास के ही श्वासोश्वास के तरह, निमेश उन्मेष के तरह अत्यंत शीघ्रता से करने वाला ब्रह्म, और अध्यात्म में मन के पुनः पुनः होने वाले जो संकल्पादि व्यापार हैं, इन व्यापारों की शक्ति मन में देने वाला जो है वह मैं हूं, ऐसा उसका, उस सगुण साकार ब्रह्म का, सगुण ब्रह्म का मैं के रूप में चिंतन। इस चिंतन को यहां पर कहा गया अधिदैव तथा अध्यात्म उपाधिक ब्रह्म की अहंग्रह उपासना। और इस प्रकार की अहंग्रह उपासना उपासक करें तो इस उपासना से क्या होगा कि ये अत्यंत तेजस्वित्व और शीघ्र कार्यकारित्व रूप जो एक गुण ये गुण बताए हैं उपास्य ब्रह्म में, तो शास्त्र बताता है कि तम यथा यथा उपासते तदेव भवति। हम परमात्मा के जिन गुणों से विशिष्टतया सगुण स्वरूप का वर्णन करते हैं तो उपासक में वही स्वरूप पुनः आ जाता है। उपास्य का जैसा चिंतन हम कर रहे हैं तो चिंत्य के ध्येय के स्वरूप और ध्येय का धर्म जो है वो उपासक में आ जाता है। तो अभी अज्ञान अवस्था में हम जो जड़ भौतिक कार्यक्रम संगात है उसी को अपने मय के रूप में ग्रहण करके मान लेते हैं कि हम वही हैं, और इसलिए शरीरादि के जो धर्म हैं उन धर्मों से युक्ततया स्वयं का अनुभव कर रहे हैं। यहां की श्रुति ये कहते हैं कि अपनी अहम वृत्ति का आलंबन अल्प शक्ति कार्यक्रम संघात को न बना करके जिस जो अत्यंत तेजस्वी हैं और जगत के उत्पत्त्यादि व्यापार अनायासी शीघ्र संपन्न करता है, ऐसा सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान जो ब्रह्म है जिससे जगत की उत्पत्ति स्थिति लय होता है उसे अपने अहम वृत्ति का आलंबन बनाए। तो क्या होगा कि ब्रह्म का जो स्वरूप है जिसका आप आत्मा के रूप में चिंतन करते हैं तो वह आपके आत्मा के रूप में आपकी बुद्धि में प्रकट होता है। इसी उद्देश्य से यहां पर ये उपासना बताई है। इस उपासना पर चर्चा हम लोग कल भी करेंगे।
अब शांति पाठ होगा। हरि ओम।
ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।